أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین رب العالمین. آج ہم سورہ شورا 25واں پارہ آیت نمبر 36 سے سورت کو مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی 53 تک. دیکھتے ہیں آج کے لیسن کی تفسیر. لیسن شروع کرنے سے پہلے پچھلی آیات پہ آپ نے غور کیا, خاص طور پہ آیت نمبر 20 پہ, کہ ہم اپنی زندگی میں کہاں کہاں ہر دنیا کے اندر بیج لگا رہے ہیں, بو رہے ہیں, اور کہاں ہر آخرہ کے اندر بیج لگا رہے ہیں. اور آپ نے ڈفرینٹ اپنے کاموں کو غور سے دیکھا کہ کدھر کدھر جا رہے ہیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. یہ ایک آیت ہماری زندگی, ہماری سوچ, ہماری نیتوں کا رخ بدل سکتی ہے, اور ہمارے ایسے کام جن کو ہم بہت ہی دنیاوی کام سمجھتے ہیں ان کو بھی ہم ہر سل آخرہ میں ڈال کے اور بہت فائدہ کما سکتے ہیں. کرنے وہی کام ہوتے ہیں آپ نے, لیکن دیکھیں ایک نیتوں کے فرق سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. زندگی کے سارے شعبے سیدھے ہو سکتے ہیں اگر ہم اس ایک آیت کو صحیح سمجھ لیں. پھر مجھے یہ بتائیں, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں ڈیفینیشن کہ ہمارا دین کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن مجھے سورہ شورا کی روشنی میں بتائیے, کیسے میں ڈیفائن کروں گی دین کو, تو آپ کہاں سے بتائیں گے؟ کیا سیکھا آپ نے سورہ؟ مجھے صرف تین الفاظ میں چاہیے اس سورت کے اندر سے نکال کے لائیے, کہاں سے مجھے پتا چلتا ہے دین ہے کیا؟ آیت 15 سے. اس بات کو ایک دفعہ سیکھ لیں گے ساری زندگی کے لیے پلے باندھ لیں. دین کیا ہے؟ بلائنڈلی آپ تین الفاظ میں ڈیفائن کر سکتے ہیں, ما انزل اللہ, جو اللہ نے نازل کیا, بس دیٹ از دین. مجھے چاہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے, وہ کہہ رہا ہے جی, وہ کہہ رہا ہے, اس کی رائے, اس کی یہ, نو, ما انزل اللہ از دین اونلی. باقی رائے ہو سکتی ہیں, کسی کی نصیحت ہو سکتی ہے, کسی کی اچھی بات ہو سکتی ہے, مگر اس کو میں دین کا حصہ نہیں بنا سکتی. دین ہے ما انزل اللہ, جس کے اوپر میں ایمان لایا ہوں, ما انزل اللہ ہو ان کتابیں, یہ ہے نا. یہ سورت بہت امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے ہمارے کانسیپٹس کلیئر کرنے کے لیے. آج کا سبق دیکھتے ہیں. اب یہ ساری جو باتیں پیچھے ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ہر سب دنیا ہر سب آخرہ کی بات کی, پھر فرمایا میں کس کو رزق دیتا ہوں, کتنا دیتا ہوں, کسی کو زیادہ کسی کو کم, سب کچھ باتیں بتا کے اب کنکلوژن ہمیں دیا کیا, فما اوتی تم من شیء فمتاع الحیات الدنیا, جو بھی تم دیے گئے ہو نا, کوئی چیز بھی, کوئی چیز مطلب نکرا ہے نا, جتنی چیزیں بھی تمہارے پاس ہیں, چاہے سونا ہے, چاندی ہے, کوئی آپ کے پاس جائیدادیں ہیں, مال ہیں, سیونگز ہیں, آپ کی اولاد ہے, آپ کی اور یہ جتنی چیزیں آپ کے پاس ہیں, گھر ہیں, گاڑیاں ہیں, یہ سب متاع الحیات الدنیا ہے, دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے, تھوڑے سے فائدے کی چیز ہے. اتنی بادشاہت بھی کسی کو مل جائے جتنی کہ فرعون نبرود کو ملی تھی, تب بھی یہ متاع الحیات الدنیا ہی ہیں. اور دنیا کیا ہے؟ ٹیمپریری. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ٹیمپریری. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وہی بات یہاں پہ, وما عند اللہ خیر و ابقا, جو اللہ کے پاس ہے نا وہ بہتر بھی ہے, زیادہ باقی رہنے والا بھی ہے. یعنی کوالٹی کے لحاظ سے بھی, کوانٹیٹی کے لحاظ سے بھی. کوالٹی میں بھی وہ اس سے بہتر ہے جو دنیا کی چیزیں, آپ دیکھ لیں دنیا کی چیزیں کیا ہیں, ہم اتنے شوق سے لے کر آتے ہیں. اب تو یہ मतलब हमेशा ये बात ना मुझे स्ट्राइक करती, जब भी बाजार से कोई चीज लेकर आते ना, बहुत ही खुशी होती है बड़ी अच्छी चीज देख के, कोई कपड़ा है, कोई ज्वेलरी है, कोई घर का सामान है, कोई कुछ बड़ी अच्छी लगती है, वो एकदम बड़ी अट्रैक्ट करती है, बड़े खुश होते हैं हम लेके। इन साथ ही ये ख्याल आता है कि ये ही चीज एक दिन मैं गार्बेज में फेंक रही हूँ, इसी चीज से एक दिन मेरा दिल उठ जाएगा। आज ऐसे लगता है ना, बस आई कितनी खूबसूरत, और बस उसको देख के इतनी खुशी होती है, संभाल संभाल के रखते हैं, बार बार देखते हैं, वाह भाई क्या, क्या मैं ये सेट बनवाया, मैंने ये ऐसे किया, और उसके बाद क्या है, एक दिन उसे ऐसा दिल ही उठ जाता है। अब वो किसी को दे रहे होते हैं, फेंक रहे होते हैं, वही चीजें गिरी पड़ी होती हैं, वही पुरानी हो जाती हैं, वो आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं। अब देखो, जब आप फेंकने लगते हैं ना किसी चीज को, तो सोचा करें कि एक दिन ऐसा भी था मैं कितनी शौक से लेकर आई थी इसको, बस कितनी उस दिन मुझे खुशी हुई थी कि ये चीज मुझे मिल गई, चाहे वो किसी ने गिफ्ट दी थी या किसी आपने खुद खरीदी थी, बड़े शौक की चीज। तो ये सब चीजें मताउल हयात दुनिया है, थोड़ा फायदा है इस जिंदगी का, थोड़ा मताव होती है वो चीज, थोड़ा सा फायदा सामान है इस दुनिया की जिंदगी। जब ये दुनिया की जिंदगी ना पायदार है, तो यहाँ का फायदा भी थोड़ा ही होगा ना, ये टेम्परेरी है, तो उसको फायदा भी टेम्परेरी ही होगा ना। और आखरत है, बेहतर भी है, वहां की कोई चीज पुरानी नहीं होगी, कोई चीज सड़ेगी नहीं, कोई चीज आउटडेट नहीं होगी, आउट ऑफ फैशन नहीं होगी, सदा बहार, एवर ग्रीन, एवर ग्रीन। आप देखते हैं ये पत्ते, कई दरख्त ऐसे हैं जो एवर ग्रीन है, और कई हैं जिन पे खिजा आती है, फिर बहार आती, फिर खिजा आती, वो हमें मैसेज देते हैं। जब बहार आती है ना, एकदम नए नए आते हैं पत्ते, तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो गिर जाते हैं तो कैसा लगता है, तब वो एवरग्रीन वाले बड़े अच्छे लगते हैं, वो दरख्त के देखो ये सदा बहार है। दुनिया भी ऐसे ही है, एक दिन गिर जाती है और रुल जाती है, एक दिन जब नई नई होती ना बड़ी खूबसूरत लगती है, उसकी चकाचौंध बड़ी होती है, लेकिन जल्दी वो फेड अवे हो जाती है। तो वो अब का भी है, बाकी भी रहने वाली है, उसने नहीं खत्म होना, वो इसकी तरह टेम्प्रेरी नहीं है। तो दोनों चीजों में देख लें, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में अच्छी है। फिर कितना बेवकूफ है इंसान ना, जो थोड़ी देर की है, जो भी दिया गया, मिनशाइन आप यू नेम इट, जो कुछ भी आपको मिला हुआ, वो थोड़ी देर का शॉर्ट टर्म है, और हमेशा के लिए आखरत का है। और सोचें कि जो आखरत के लिए फिर वक्त ना लगाए, और सब कुछ यही इन्वेस्ट करता जाए इसी हर सुद दुनिया में, कितना नुकसान उठकर सौदा कर रहा है ना वो। लेकिन ये किसके लिए है, लिल्लदीन आमनु वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, ये उनके लिए बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली, जो ईमान लाए और अपने रब पर तवक्कल करते हैं, सबके लिए बेहतर नहीं है वहां पे, ऐसे नहीं होगा सबके लिए बड़ा अच्छा वहां पे आखरत में बादशाहत मिल रही है और जन्नतें मिल रही हैं। अब इसके पढ़ने के बाद इंसान क्या करे फिर, तो फिर इंसान कुछ भी ना दुनिया की जिंदगी में कुछ खरीदे ही ना, कुछ ले ही ना, क्या कभी भी कुछ बनाए ही ना, नहीं ऐसा नहीं कहा जा रहा, ऐसा नहीं, बल्कि जो भी फिर है ये सोच के इस्तेमाल करें, ये हमेशा का नहीं है। जब ये सोच के लेगा ना, तो वो लेते वक्त किसी का हक नहीं मारेगा, किसी पे ज्यादती नहीं करेगा, लूटे खसूटे का नहीं, इसलिए उसको पता है कि ये तो खत्म हो जाना है, तो टेम्प्रेरी है, तो बाकी नहीं रहना, मैं किस चीज के लिए इतना लोगों का खून कर रहा हूं, लूट खसूट कर रहा हूं, मैं किस लिए चोर बाजारी कर रहा हूं। तो लेकिन उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और अपने रब पर तवक्कल करते हैं, तवक्कल क्या चीज होती है, ऐसा भरोसा कि उसके बाद इंसान उसके ऊपर छोड़ दे अपने सारे कामों को, ऐसा भरोसा किसी के ऊपर करना, इसकी मिसाल से आपको ज्यादा बात समझ आएगी। और वो है कि जिस वक्त बीबी हाजरा ने अल्लाह के ऊपर तवक्कल किया था, जब उनको सहरा में छोड़ा जा रहा था, तो वो होता है तवक्कल। तवक्कल वो है जो परिंदे करते हैं, जब वो सुबह अपने घोंसलों से निकलते हैं, खाली पेट होते हैं, और वो कैसे अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, क्या भरोसा होता है उनका अल्लाह पे कि अल्लाह हमारा पेट भर के ही हमें वापस भेजेगा, और बाकी सारे पेट भरे हुए ही वापस आते हैं। उनकी कहाँ पे जॉब्स हैं, उनके कहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, उनको कौन सी तनख्वाहें मिल रही हैं, उनको किसने प्रोमिसेस किए हुए हैं कि आज का आज आपको दिया जाएगा, वो कौन से दिहाड़ीदार मजदूर हैं। लेकिन फिर अल्लाह पेट भरता है ना उनके, क्योंकि वो अल्लाह पे भरोसा करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम उसी तरह भरोसा करो जैसे परिंदे अल्लाह के ऊपर तवक्कल करते हैं, तो अल्लाह तुम्हें भी इसी तरह खिला दे। लेकिन हमें बेवसाई हो जाती है, हमसे नहीं हो पाता, हमारे अंदर वो ट्रस्ट ही नहीं है। देखिए, ईमान होगा तो ये ट्रस्ट आएगा, और ये ट्रस्ट होगा तो तभी इंसान इस दुनिया की कोई चीज़ कुर्बान करेगा आखरत के लिए ना, तभी इंसान कुछ लगाएगा अपनी आखरत के लिए ना। और जिसको ये भरोसा नहीं है अल्लाह के वादों के ऊपर, वो कैसे इस तरह से ब्लाइंडली करने लगे कि वो जन्नत तो मैं देखी नहीं है तो फिर कैसे लगाऊं उसके लिए। ये ऐसे ही है जैसे आपके पास कोई बंदा आए और वो आपको कहे कि जी ऐसी एक जगह है, बड़ी खूबसूरत लोकेलिटी है, आप ऐसी तो आपने कभी देखी नहीं, ऐसी तो कहीं है ही नहीं, इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन, इतनी ये, वहाँ पे आबशारे हैं और ऐसे है और जो पहाड़ हैं और ग्रीनरी और ऐसे, वहाँ पे आपको घर में बना के दूंगा, लेकिन पेमेंट आपको आज करनी पड़ेगी। अब आप उससे पूछते हैं जी मुझे दिखाओ, लेके चलो उस जगह पे, तो वो कहता नहीं लेके नहीं मैं जा सकता, तो फिर जब बनेगी तो फिर ही आप उसको विजिट कर सकते हैं, जब आप मुझे पेमेंट दें आज। अब आप उसको कहते हैं कि अच्छा तो लेकर नहीं जा सकते, उसका कोई मॉडल ही दिखा दो, मॉडल तो नहीं दिखा सकता, कोई तस्वीर है वो दिखा दो, नहीं तस्वीर तो मेरे पास कोई नहीं है। अब आप क्या इन्वेस्ट करेंगे उसके पास, देंगे पेमेंट? सिर्फ उस सूरत में आप देंगे उसको पेमेंट जबकि आपको 100% यकीन होगा कि वाकई जब ये मेरे से पेमेंट लेगा तो मेरा घर वहां पे बन जाएगा, बना देगा, ये फ्रॉड नहीं कर रहा, ये सच कह रहा है, तभी आप आज पेमेंट करेंगे ना। जो उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा होगा वो कहेगा नहीं ऐसी बातें हैं, छोड़ो भाई, किसने देखी, क्या पता हो ही ना, और ऐसे ही ये हमें बातें कर रहा हूं। ऐसा बंदा तो कभी पेमेंट नहीं करेगा ना। इसी तरह आप ये देखें, जिसको अल्लाह के वादों पर यकीन हो कि अल्लाह ताला एक ऐसी जन्नत के प्रोमिसेस कर रहा है जो हमने देखी नहीं है, सिर्फ सुनी है बातें उसकी, सिर्फ उसके नज़ारों की बातें सुनी है, कोई पिक्चर भी नहीं देखी, कहीं हमें ले जाके भी नहीं दिखाया गया, बस ये दिखा दिया गया दुनिया में देख लो ना कैसी हसीन है ये दुनिया, इससे कई गुना ज्यादा हसीन है, यहाँ के दरख्त देख लो, वहां पे दरख्त होंगे ऐसे नहीं होंगे लेकिन तुम इससे थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो, यहाँ की नहरें देख लो ऐसी नहीं होंगी लेकिन तुम इससे थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो। अब जिसको यकीन होगा ना अल्लाह की बात पे, वो आज पेमेंट करने को तैयार होगा, और जिसको यकीन नहीं है, जरा सा भी डाउट है ना, वो कहेगा कल किसने देखा, क्या पता, वो जो आज वक्त आएगा देखी जाएगी जी, राइट। तो अब ये तवक्कुल बहुत जरूरी है, तवक्कुल होगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे हर सुलाखिरा में, और अल्लाह पे तवक्कुल ही नहीं तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकेगी, क्योंकि दिल हर वक्त वो रहेगा ना, पता नहीं क्या पता, क्या पता हो ही ना, क्या पता ये बातें हो, क्या पता ऐसे हो जाए, क्या पता वैसे हो जाए, तो वो क्या पता के ऊपर कौन फिर लगाएगा अपनी जिंदगी। तो जिसको पूरा पूरा भरोसा होगा, नहीं मेरे अल्लाह ने जो कुछ कहा है सच कहा है, उसके वादे सच्चे हैं, ऐसा ही होकर रहेगा, वो कहेगा ले लो मेरे से जो लेना है, लेकिन मुझे आखरत में एक घर दे दो जन्नत में, ठीक है। तो ये ईमान वालों के लिए वहां पे अल्लाह के पास वो कुछ है जो बेहतर भी है और बाकी रहने वाला भी है, क्योंकि ईमान वाले फिर इन्वेस्टमेंट अल्लाह के पास करते हैं और हरसुल आखिर हमें लगाते हैं। और फिर ये ईमान वाले कैसे हैं, अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अपने रब के ऊपर भरोसा करने वाले हैं। और इनकी क्या क्वालिटीज है, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था ईमान वो बीज है जिससे अमल फूटता है, वो बीज आप डालते हैं ना उससे आगे जो ब्रांचेस निकलती हैं वो अमाल निकलते हैं। जिस वक्त ईमान मजबूत होगा तो आप उसके समरात देखेंगे, उसके फल देखेंगे, और ईमान में कमजोरी होगी, कीड़ा लगा होगा उस बीज को, तो आप देखेंगे अमल भी सही नहीं होगा। अमल में कोताही कब होती है? पीछे पीछे जाएं, ईमान में खराबी है, क्योंकि ईमान तो इतनी बड़ी चीज है जो इनकलाब ले आती है, इतनी बड़ी चीज है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है। अगर आपने ईमान देखना है ना, ईमान की एक मिसाल आपको दिखाऊं, फिरौन के जादूगरों को देख लें, सुभान अल्लाह, एक लम्हे की तो बात थी, एक लम्हा पहले क्या थे और ईमान आने के बाद क्या बन गए, ये क्या हो गया उनको? इंसान तो वही है, अभी तो वो कह रहे थे वो फिरौन हमें क्या दोगे, तुम इनाम है, ये दोगे वो दोगे क्या दोगे, एक लम्हे बाद इनको क्या हो गया? ये कह रहे हैं हमें चाहे सूली पे चढ़ा दो, चाहे कुछ भी कर दो, हमने टस से मस नहीं होना, क्या हो गया इनको? ईमान आ गया दिल में, बात समझ आई? कुछ नहीं और बदला, सिर्फ बदला है तो ये कि पहले ईमान नहीं था, अब ईमान ने दिल में जगह पकड़ ली, आप देख लें फ्लिप हो गए बिल्कुल। तो ईमान आता है तो जिंदगी में टोटल चेंज आ जाती है, इंसान वो रहता ही नहीं जो पहले था, बदल जाता है वो, होता वही है, अंदर ही उसका बदल जाता है। इसी वजह से फिर जो अमल उससे होते ना, वो भी बदले हुए होते, वो पहले जैसा नहीं है। लोग भी कहते तुम पहले जैसी नहीं रही, जैसे पहले तुम हुआ करती थी। जब ये चीज आए ना, फिर पता चलेगा कि वाकई हमने जो कुरान पढ़ा, इसने हमारे ईमान में इजाफा कर दिया, तब पता चलेगा कि हम एक ट्रांसफॉर्म होके नए इंसान बन गए। पहले कुरान पढ़ने से पहले भी हम अपने आप को ईमान वाले कहते थे, लेकिन वाकई सच्चा ईमान हमें कुरान देता है। फिर हमें, हम जब कुरान की तरफ आए तो हमें पता चला ईमान होता क्या है, हमें तो पहले पता ही नहीं था ईमान क्या चीज होती, बस नाम के ही मुसलमान थे ना। अब इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए, अल्लाह पे तवक्कुल आना चाहिए। इसका मतलब इट्स अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल जो हमें करनी है। अभी हम 25 पारे पढ़ के मुकम्मल नहीं हो गए, अभी हमें इन पे वर्क करना है कि मैं कैसे अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करूं, ऐसा कि बस अल्लाह पे भरोसा ऐसा हो जाए कि बस मैं बेफिक्र हो जाऊं, अल्लाह तेरे पर छोड़ दिया ना, तू है ना, बस बस तू है। बीबी हाजरा ने भी तो छोड़ा था अल्लाह पे, कौन सी चीज थी जो उनकी फेवर में थी उस जगह पे? नेम वन थिंग जो फेवर में थी उनके, कोई भी फेवरेबल हालात नहीं थे। इर्द गिर्द असबाब के तौर पे देखो तो कुछ भी नहीं था, अगर सिर्फ एक चीज थी उनके पास, अल्लाह पे तवक्कुल, कि अल्लाह करेगा ना कुछ, और अल्लाह ने कर दिखाया। फिर ऐसा हमारे पास क्यों नहीं है, क्यों हमारे दिल इससे खाली है? इसके ऊपर हमें वर्क करना है। तो ये उन लोग, यहां से पता चलता है, अब ये जो आगे बातें होंगी ना, आप 43 आयत तक आप पढ़ेंगे, ये 36 से शुरू हुई है और 43 तक, ये ईमान वालों की खसूसियात है। कौन से ईमान वाले? जिनके लिए अल्लाह के पास क्या है? खैरुम व अबका है। और वो क्या चीज है जो खैरुम व अबका है? जन्नत। जिनके लिए अल्लाह के पास जन्नत है ना, उनकी खूबियां क्या है असल में, ये बताई जा रही है, ये समझ लें। ये क्योंकि कहा गया ना, वमा इंदल्लाहि खैरुम व अबका, किसके लिए? लिल्लदीना आमनु व अला रब्बिहिम यतवक्कलून वल्लदीना यस्तनिबूना कबायरल इस्म वल फाहिशा। इस यानी पूरी लिस्ट अब दे दी गई कि वो कौन है जिनके लिए अल्लाह के पास खैरुम व अबका रखी हुई है। सुभान अल्लाह, उनकी पहली बात है कि ईमान। असल में ईमान के साथ ही ये सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन इनको अलग अलग भी डिफाइन किया गया इनकी बहुत ज्यादा अहमियत की वजह से, वरना ईमान के अंदर ही है ये सब चीजें, ईमान इन सब चीजों को कवर करता है। तो क्या करते हैं अगली इनकी बात क्या है? एक तो भरोसा हो गया, फिर वल्लदीना यजतनीबूना कबायरल इस्म, वो इज्तनाब करते हैं बड़े बड़े गुनाहों से। बड़े गुनाह कौन से हैं? सबसे बड़ा गुनाह तो आपको पता है ना, शिर्क है, कत्ले नाहक, जिना, जादू, मैदान जंग से भाग जाना, وہ سات موبقات جو ہلاک کر دینے والے گناہ ان کی لسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ وہ بھی بڑے گناہ ہیں جن کو ہم کبیرہ گناہ کہتے ہیں جن پہ حد لگائی گئی. پھر اس کے علاوہ وہ بھی تمام کبیرہ ہی گناہ ہیں جن کے اوپر قرآن میں کہہ دیا گیا ان کے لیے ویل ہے, ان کے لیے دردناک عذاب ہے, ان کے لیے بڑا عذاب ہے, ان کے لیے جہنم ہے, ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. اس طرح کی جو بھی باتیں کہی گئی ہیں نا قرآن میں, اس کا مطلب وہ بڑے ہی گناہ ہیں نا جن کے اوپر اللہ کا اتنا غضب ہے, لعنت ہے. یہ سب چیزیں جب قرآن میں کہہ دی جائیں اس کا مطلب ایک کبیرہ گناہ ہے, تو وہ بھی کبیرہ کی لسٹ میں آ گئے. اسی طرح حدیث میں جن میں کہہ دیا گیا ہو کہ فلاں کے لیے ایسے, فلاں ہم میں سے نہیں, فلاں ایسا, یعنی ان کے اوپر لعنت ہے, یا وہ بھی سارے کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہے گئے. تو وہ بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس صغیرہ کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں, وہ پھر صغیرہ کرتے رہتے ہیں کبیرہ سے بس بچتے رہے. دیکھیں, یاد رکھیں, صغیرہ گناہ بھی اگر ڈھٹائی کے ساتھ کرتے چلے جائیں تو وہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں, جیسے قطرہ قطرہ کر کے سمندر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب قطرہ قطرہ کر کے دیکھیں, چھوٹا چھوٹا قطرہ ہوتا ہے نا, اس سے کتنا بڑا سمندر بن گیا. اسی طرح صغیرہ گناہ بھی ڈھٹائی کے ساتھ انسان کرتا رہے تو وہ بھی کبیرہ ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے بچائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے, اس نے سورہ نساء میں فرما دیا, ان تجتنبوا کبائر الاثم, جو اگر تم اجتناب کرو گے کبیرہ گناہوں سے, کبیرہ سے بھی اگر تم بچ جاؤ گے نا, تو اللہ تعالیٰ تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی بڑے بڑے گناہوں سے جو بچ جائے تو اس کے لیے چھوٹے گناہ چھوڑنا تو اتنی کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے, پھر وہ چھوٹے بھی چھوڑ دے گا جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا. اور جو انسان بڑے بڑے گناہ کرنے لگے اس کے لیے چھوٹے تو کچھ ہے ہی نہیں, وہ چھوٹوں کو تو ویسے ہی نگل جاتا ہے نا. اسے پتا چلتا ہے جب بڑے گناہ انسان چھوڑتا ہے, اگر تم اتنا بڑا گناہ چھوڑ سکتے ہو نا, تو پھر کیا چھوٹا سا, یہ چھوٹی سی چیز ہے, یہ نہیں اللہ کے لیے چھوڑ سکتے. سمجھے؟ تو اس میں سارا کچھ ہی آ گیا, ظلم آ گیا, اس میں زیادتی آ گئی, اس میں یہ سب آ گیا. والفواحش, اور فواحش, فحاشی بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہی ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کچھ چیزیں ایسی بھی بتائی گئیں جو خاص تھی, ان کو الگ کر کے بھی بتایا گیا. کوئی خاص چیز ہوتی ہے اس کا الگ سے بھی ایک ذکر کرنا ہو جاتا ہے, تو اس لیے الگ سے بھی اس کو ذکر کیا گیا. یہ جو فواہش ہے نا, اس کو ڈیفائن کرنا بہت ہی مجھے ہمیشہ مشکل لگتا ہے. اور وجہ کیا ہے کہ آج کے وقت میں اگر کچھ چیزوں کو کہا جائے کہ یہ بھی بے حیائی کی ہیں, تو لوگ حیران ہوتے ہیں, اچھا یہ بھی بے حیائی کی بات ہے. کیونکہ لوگوں میں آج اتنی بے حیائی کی باتیں عام ہو چکی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اس میں کیا بات ہے, یہ کون سی بے حیائی ہے, یہ تو آپ زیادہ ہی ایکسٹریم ہو گئے. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زنا سے نہیں روکا گیا, زنا کی طرف جانے والے راستے سے بھی روک دیا گیا. تو زنا تو فحاشی میں آتا ہی ہے, اب زنا کی طرف جانے والے جتنے راستے ہیں ان سے بھی روکا گیا ہے. فحش راستے تمام, اور فحش کیا چیز ہوتی ہے, وہ برائی جو شہوت ابھارتی ہے, انسان کی لسٹ کو ابھارتی ہے. سمجھ آئی؟ لسٹ یعنی اسلام نے شہوانی جو انسان کی خواہشات ہیں نا, ان کو پوری کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک راستہ رکھا ہے, صرف ایک راستہ, اور وہ ہے نکاح کا راستہ. دیٹ از اٹ. آج کل تو کانکیبائنز بھی نہیں, لانڈیوں کا بھی نہیں تصور کوئی رہ گیا دنیا کے اندر, کہ قرآن نے صرف اس چیز کی اجازت دی ہے. سورہ مومنون میں ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ ازواج کے ساتھ یا اپنی لانڈیوں کے ساتھ, لا ملکت ایمانکم, جو تمہارے زیر دست ہیں تمہاری لانڈیاں. لیکن جب آج لانڈیاں نہیں ہیں تو صرف بیوی رہ گئی, اور بیویاں بھی نہیں ہیں آج کل, کوئی نہیں, ہم نے دیکھا ہوگا چار بیویوں والا, दो बीवियों वाला भी नहीं, तो एक ही बीवी रह गई। तो आदमी के पास सिर्फ एक रास्ता है, औरत के पास भी इसी तरह सिर्फ एक रास्ता ही है। इसी वजह से इतनी ज्यादा इस बात के ऊपर जोर दिया जाता है कि मर्द की जो इज्जत की नजरों की हिफाजत है वो सिर्फ इसी औरत के जरिए हो सकती है, और वो औरत भी अगर मुंह मोड़ के बैठ जाए तो फिर वो आदमी गुनाह में पड़ सकता है, और अगर वो गुनाह में पड़ गया और उसने कोई और रास्ता इख्तियार किया तो इस औरत के ऊपर भी वो गुनाह है। समझ आई बात? इस वजह से ये इतनी ज्यादा वैलिड चीज है। कई औरतें शिकायत करती हैं कि हमारे तो हकूक आप बताती नहीं है कि इस तरह से हमारा भी हक है। ये सब औरत का बहुत ही कम चांस है, बहुत ही कम चांस है कि अगर उसका शौहर उसकी जरूरत ना पूरी करे तो वो कहीं बाहर जाके अपनी जरूरत पूरी करे, लेकिन मर्द का बहुत ज्यादा ये चांस होता है। तो फहाशी का हर रास्ता इस्लाम बंद करता है, बेहयाई का हर रास्ता। याद रखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बाहया थे, इवन कुमारी लड़कियों से भी ज्यादा बाहया थे, और अल्लाह ताला खुद हया वाला है, इसीलिए उसने बेहयाई की तमाम चीजों को हराम करार दिया है। और बेहयाई जाहिरी भी और बातनी भी, यानी खुल्लम खुल्ला भी जो होती है और बातनी भी। तो हर वो काम जो इंसान की जो ये शहवानी जो उसकी जज्बात है ना उनको उभारती हो, उनको इंसान को एक्साइट करती हो इस चीज के लिए, उसमें आप खुद बता दें कि आज क्या क्या चीजें हैं, सब वो बेहयाई के अंदर ही आती है। सिर्फ इस डेफिनेशन के ऊपर रख के बताएं, ये ना सोचें कि नहीं ये तो आजकल होता ही है, वो तो आजकल होता ही है, फलाने से क्या फर्क पड़ता है, आप तो बहुत टू मच है, ये ना सोचें। सिर्फ इस डेफिनेशन के ऊपर रख के बताएं कि जो इंसान के शहवानी जज्बात को उभारे वो क्या क्या चीजें, और उनके अंदर आप अपने मीडिया से लेकर तमाम ऐसी चीजें जो के तमाम ऐसे सीन्स, तमाम ऐसे यानी रीडिंग मटेरियल, तमाम ऐसी तस्वीर, तमाम ऐसे ड्रामे फिल्में या जो भी चीजें जिनमें ऐसे ऐसे मनाजिर दिखाए जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं, ऐसे ऐसे डायलॉग्स होते हैं, या कोई इवन कोई शायरी भी है, म्यूजिक को तो छोड़ दें, गानों में म्यूजिक को छोड़ दें, अगर म्यूजिक निकाल भी दें, ऐसी शायरी जो जज्बात को उभारती है वो सब क्या है फिर? क्या वो फहाशी में नहीं आती? अगर हमारा मुआशरा इसको एक्सेप्ट करने लगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो फहाशी नहीं रही। ऐसी तमाम ड्रेसिंग, ऐसे पहनावे, क्या वो फहाशी नहीं है? जिसमें यानी अंदर के जो अंदर के आपकी कपड़े हैं वो भी नजर आए। कहां औरत को ये कहा गया कि लिबास के ऊपर भी लिबास पहनो, जिलबाब पहनो, और कहां ये कि वो बिल्कुल जो अंदर का आपका सतर को कवर करने के लिए जो आपने पहने में अंडर गारमेंट्स वो भी नजर आ रहे हैं, और शौक से आप ब्लैक पहने ताकि ऊपर नजर आए बाहर, क्या वो फहाशी नहीं है? वो हमारे लिए तो कोई चीज ही नहीं, ये कौन सी इतनी मशहूर। लोग तो इससे भी ज्यादा करते हैं, लोग कुछ भी करते हो, लेकिन ये जो जन्नत में जाने वाले हैं ना ये फहाशी से दूर रहते हैं। ऐसी मिक्स्ड गैदरिंग्स यहाँ पे औरतें इतनी बन संवर के हों कि मर्दों की नजरें जाएं, क्या वो फहाशी नहीं है? क्या उससे उनके जज्बात नहीं उभरते? क्या ये फहाशी नहीं है कि औरत और मर्द अकेले हों किसी जगह पे? क्या ये बेहयाई नहीं है? हम सोचते हैं फहाशी तो बहुत बड़ा लफ्ज है, बहुत बड़ा नहीं, जो भी चीज इस तरह की जो इंसान को इस रास्ते की तरफ भी लेकर आए ना उससे भी परहेज करें। ऐसे तमाम नामहरम लोग जो हमारे पास हमारी लिस्टों में हैं, जिनके साथ हम बातें करते हैं वन टू वन व्हाट्सएप पे, इस पे, जिनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमने क्यों उनको सेव किया हुआ अपने पास? हम क्यों उनसे बातचीत रखते हैं? हमारा कोई काम नहीं है उनके साथ, क्या ये बेहयाई की तरफ ले जाने वाली चीज नहीं है? क्या आप एट रिस्क नहीं है फिर? और यहीं से फिर आगे फिर रास्ते खुलते हैं। फिर देखें, याद रखें हमारे दीन में सिर्फ जिना ये नहीं कहा गया कि शर्मगाह से जिना होता है, आपको पता है हमारे दीन में कहा गया कि आंखों का भी जिना है, कानों का भी जिना है, हाथों का भी जिना है, पैरों का भी जिना है। शर्मगाह तो एंड में आती है उसकी तस्दीक करने के लिए, जब फाइनल बात हो जाती। शुरू तो आंखों से होता है ना। औरतों का ऐसे मर्दों को देखना, चाहे स्क्रीन पे देख रही हूं, चाहे कहीं पे भी देख रही हूं, चाहे लाइव में देख रही हूं, जिसे उनके दिल में जज्बात उभरे, उसकी तरफ अट्रैक्शन फील हो उनको। जब कोई औरत कहती है बड़ा हैंडसम लग रहा है, तो ये क्या मतलब है? और आज मुझे, मैं तो अस्तग़फ़िरुल्लाह उस लफ्ज को भी नहीं बोलना चाहती है जितना एक बुरा वर्ड है जो कहा जाता है कि फलां वो लग रहा है। सबको समझ आ गई होगी फलां औरत वो लग रही है। यानी खास तौर पे उस लफ्ज के साथ ही कह देना, और उससे ज्यादा बेहयाई क्या हो सकती है? जब आपके ड्रामों और फिल्मों के अंदर लोगों की सुहागरातें दिखाई जाती हैं, ये क्या है? ये बेहयाई नहीं है क्या? जब एक मर्द और औरत को क्लोज एक दूसरे से दिखाया जाता है, एक दूसरे से करीब दिखाया जाता है, ये क्या है? गले मिलते दिखाया जाता है, ये क्या है? लेकिन हमारे लिए आज ये कुछ है ही नहीं, हम इसको फहाशी समझते ही नहीं है। हमें शायद अभी तक समझ ही नहीं है कि फहाशी बेहयाई क्या चीज होती है। हम बैठे देखते रहते हैं और इसके ऊपर हमें जरा भी वो नहीं होता कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। फिर इसके अलावा ऐसे बिलबोर्ड्स, ऐसे इश्तहारात, ऐसी जिसमें खास तौर पे औरतें या मर्द ऐसे मॉडल्स दिखाए जाते हैं जो कि लोगों को, यानी मर्द है तो औरतों की तरफ या औरतें हैं तो मर्दों की तरफ इस तरह से अट्रैक्ट होती हैं, ये इन रास्तों से भी बचना है। इसी तरह फिर फवाहिश में जिना फिर आगे जाके आ जाता है। ये भी फिर इसके भी रास्ते कौन सी चीजें बनती हैं? जब औरतें अपनी जीनत का इजहार करती हैं, नुमाइश करती हैं, डिस्प्ले करती हैं अपनी ब्यूटी को, तभी कोई आदमी अट्रैक्ट होता है ना। वो बुरके हिजाब के अंदर जा रही हो, जिसको पूरी तरह उसको पता भी नहीं चल रहा कि ये क्या है, अंदर से क्या कैसी लगती है, वो उसकी तरफ क्या अट्रैक्ट होगा? आप एक खाना खूबसूरत सा सजा के किसी भूखे के सामने रख दे, वो उससे ज्यादा अट्रैक्ट होगा, या उसी खाने के ऊपर आप ढक्कन दे दें, वो क्या अट्रैक्ट होगा? उसके ऊपर तो उसको नजर ही नहीं कोई आ रहा, मुंह में पानी किसके आएगा? जो देखेगा कि एक ऐसी चीज है जो, यानी बड़ी प्लेट सजी भी है और उसके अंदर खुशबुएं भी फैल रही हैं, और फिर वो बहुत मरहूब उसका जो उसको पसंद है वो वाला खाना है, उसको सामने नजर आ रहा है, तभी अट्रैक्ट होगा ना, तभी मुंह में पानी आएगा ना। और आपने उसके ऊपर प्लेट रख दी तो नहीं अट्रैक्ट होगा। यही हिकमत है पर्दे के लिए भी, कि माशरे को साफ सुथरा रखा जाए, वहां पे ये इस किस्म की चीजें ना हो। लेकिन आप सबकी जिम्मेदारी तो कोई नहीं ले सकता, मगर हाँ, जो मोमिन औरत होगी वो अपने आप को ऐसा नहीं करेगी कि वो गुजर के जा रही हो तो आदमी की नजर यहां से शुरू हो जहां से वो चलने लगी और आखिर तक जाए, वो ऐसा नहीं करेगी। ना वो ऐसा लिबास पहनेगी, ना ऐसी चाल चलेगी, ना ऐसी हंसी हंसेगी, ना ऐसी बातें करेगी कि किसी का दिल में कोई बात आए। तो फिर जिना भी और ये होमोसेक्सुअलिटी और औरतों का औरतों के साथ हम बिस्तरी करना या जानवरों के साथ किसी का बुरा फेल करना, ये सब फवाहिश हैं, ये सब फवाहिश हैं। एक ये उसकी क्लाइमेक्स है, लेकिन सारी पीछे बातें देखें आप, वो सब जो इस तरफ को ले जाने वाली हैं, जो इस रास्ते की तरफ लेकर आती हैं, उन्हीं सब से ही बचना है। वो सभी बेहयाई हैं। मेरे ख्याल मैंने काफी ओपनली आपको बता दिया, किसी को आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, हमें तो पता ही नहीं बेहयाई क्या होती है। याद रखिएगा कि ये लोग जो होते हैं ना, जिनके लिए अल्लाह के पास क्या है, खैर व अबका है, उनकी ये क्वालिटी है कि वो इससे बचते हैं। वइज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून, जब गजबनाक होते हैं तो वो दरगुजर करते हैं, माफ कर देते हैं। यानी जब उनको गुस्सा आता है तो वो माफ कर देते हैं। गुस्सा दो तरह का होता है, एक गुस्सा तो जायज गुस्सा है और एक नाजायज है। देखिये गुस्सा इंसान के ना, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं कहा गया कि गुस्सा कभी आता ही नहीं उनको, गुस्सा कभी वो उनके अंदर गुस्से की चांस ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। गुस्सा जब आता है इसका मतलब गुस्सा उनको भी आ जाता है, तो तब वो माफ कर देते हैं। तो गुस्सा एक है जायज और एक नाजायज, मैंने आपको बताया। जायज गुस्सा कौन सा? जब दीन के ऊपर कोई बात आए, जब अल्लाह उसके रसूल के ऊपर कोई बात आए, तो उस वक्त गुस्सा होना इस बात का, इसकी जिसको कहते हैं गैरत, हमीयत, गैरत ईमानी, ये होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हो कि बस अल्लाह रसूल की कोई बात भी हो रही है तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कहते रहें जो मर्जी, हमारे रसूल को कुछ कहें हमें नहीं कोई फर्क पड़ता। दूसरा गुस्सा कौन सा? जो इंसान की अपनी जात की कोई बात हो, कोई इस तरह की बात हो, मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ गया, उसने ऐसे क्यों किया, मुझे गुस्सा आ गया, वो गुस्सा नापसंदीदा है, वो बुरा है। इसलिए कि उस गुस्से के अंदर अक्सर अपनी अना का हाथ होता है कि जैसे मैंने चाहा तो वैसा क्यों नहीं हुआ, उलट क्यों हुआ, ये गुस्सा नापसंदीदा है। तो एक गुस्सा जो होना चाहिए, बाज दफा वो गुस्सा तो नहीं होता, या अल्लाह की हदूद कोई तोड़ रहा है, तो इस चीज के ऊपर गुस्सा होना चाहिए कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, हमें उसके ऊपर गुस्सा आता नहीं है। जो मसलन है कि एक बाप है, उसकी बेटी बेहया लिबास पहन के जा रही है, अब इसके ऊपर उसको कोई गुस्सा नहीं आ रहा, नहीं जी बड़े ठंडे मिजाज के, इस चीज पे तो गुस्सा आना चाहिए। जब गुस्सा किस बात पे आ रहा है कि आज मेरी पसंद का खाना क्यों नहीं बना, हालांकि उस पर गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो बात गुस्सा आने की नहीं है, बात ही ये है कि गुस्से को चैनलाइज कैसे किया जाता है, कैसे उसका इजहार किया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गुस्सा आ जाता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसे चेहरा मुबारक सुर्ख हो जाता था। अगर ये ऐसी चीज होती जो आना ही नहीं चाहिए, तो फिर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए। लेकिन गुस्सा आता था, लेकिन अपनी जात के लिए नहीं कभी ऐसे आता था। अगर कोई गर्दन में चादर डाल के और खींच रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से से उसको थप्पड़ नहीं मार रहे। तो गुस्सा उन चीजों के ऊपर नहीं आपने किया, गुस्सा जहां पे अल्लाह की हदें टूटती हैं, जहां पे अल्लाह के दुश्मन कोई ऐसी बात करते हैं, वहां पे कोई गुस्सा किया है तो किया है, वरना नहीं किया। तो हम देखते हैं कि जब हम गुस्सा करते हैं तो हम किन चीजों पर गुस्सा करते हैं। गुस्से को आग कहा गया इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर खड़े हो तो बैठ जाओ गुस्सा आए तो, बैठे हो तो लेट जाओ, ठंडे पानी से वुजू करो, औज़ु बिल्लाह पढ़ो। तो ये चीजें, क्योंकि गुस्सा आग है ना, उसको बुझाने के लिए पानी, वुजू करो। अब हम देखें कि जब हमें गुस्सा आता है तो फिर हम क्या करते हैं। यहां पे इनकी क्वालिटी तो है कि हम यग़फ़िरून, वो माफ कर देते हैं। खुशी में माफ करना तो आसान है, चलो जी आज मैं बहुत खुश हूं, जाओ तुम्हें माफ किया, ये इस तरह कहते हैं ना लोग, आज मैं बड़ी खुश हूं, जा तुझे माफ किया, तू भी क्या याद करेगी। ये तो चलो आसान है, पता तो तब चले जब गुस्सा हो तो माफ कर दे, क्योंकि हमने पढ़ा है सूरह आले इमरान में, वल काज़िमीन अल ग़ैज़, गुस्से का घूंट पी जाते हैं, दबा लेते हैं गुस्से को। यानी गुस्सा आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, आ जाता है, लेकिन उसके बाद क्या है, जो सबसे अच्छा घूंट है ना, कड़वा घूंट पी जाना, वो गुस्से का घूंट है जो इंसान पी जाता है। और ये है असल बहादुरी, ये जो गुस्सा है जिस वक्त इस बात के ऊपर गुस्सा इंसान को हो। और वहां पे भी देखें आले इमरान में भी ये किसकी क्वालिटी बताई गई है, जन्नत में जाने वालों की, कि वल काज़िमीन अल ग़ैज़ वल आफ़ीन अनिन नास, लोगों को माफ कर देते हैं। फिर गुस्से को लेकर, और उसके बाद अगर हम इन लोगों में से हैं कि गुस्से को लेकर अगर घर में प्लेटें टूट रही हैं, और बच्चे दुबके में कि आज माँ को गुस्सा आ गया, और शौहर कह रहा है कि मैं घर आज क्यों आ गया, मेरी गलती हो गई, आज मैं घर आ गया, कि ये आज तो बेगम का मूड ही बहुत खराब है, तो फिर तो हमारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है। और उसके बाद जब गुस्सा उतर जाए तो फिर कहना कि ओ हो मुझे तो पता नहीं चला, मैं तो उस वक्त गुस्से में थी। और आप देखते हैं कई मर्द गुस्से में तलाकें दे देते हैं, फिर औरतें कहती हैं नहीं जी गुस्से में थी तो इसलिए तलाक दे दी। अब होश आया तो फिर आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा ऐसा कोई इरादा तो नहीं था। तो इसका मतलब गुस्सा क्या चीज है, एक नशा है जो कर लिया तो अकल ही जाती रही। मैंने आपको बताया ना चैनलाइज कैसे आप उसको करते हैं, अकल ऐसी हो गई कि बिल्कुल माउफ हो गई, आपने गुस्से को क्या दबाना था, गुस्से ने आपको दबा लिया। अब क्या है, जब अकल माउफ हो गई तो फिर पता ही नहीं कि मुंह से क्या बोल रहे हैं, तलाक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं पता, बिल्कुल पागल हो गए। एक जगह मैं पढ़ रही थी, बड़ी जबरदस्त बात थी, कि जब इंसान गुस्से में होता है ना तो शैतान उसके साथ कैसे खेलता है, जैसे आपके बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं ना, गेंद को किक लगाते हैं, इधर फेंका उधर फेंका उधर फेंका, इस तरह शैतान इंसान के साथ खेलता है। टोटल इंसान उसके हाथ में आ जाता है, क्योंकि वो गुस्से में बावला हुआ पड़ा है, पागल हुआ पड़ा है, उसको तो कुछ नहीं पता चल रहा वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। अब शैतान उसके साथ खेलता है, फिर उससे वो काम करवाता है कि फिर जो उसने नॉर्मल हालात में कभी किया ही ना हो। इसलिए गुस्सा एक बुरी चीज है कि जब इस तरह की उसमें किया जाए। मैंने आपको बताया कि जायज गुस्सा भी है, वो नहीं, तब गुस्सा बुरी चीज है जब इंसान गुस्से में पागल हो जाए। देखें गुस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आया, लेकिन क्या आपने गुस्से में ऐसी हरकतें की? क्या आपने गुस्से में कभी किसी से ज्यादती की थी, जुल्म किया कभी किसी के ऊपर? तो इसलिए गुस्से के आलम में फिर जब वो उसका ऐसे ही है जैसे अब नशा था, वो नशा जब टूटा खत्म हुआ तब इंसान नादिम होता है कि हाय ये मैं क्या कर बैठा, वो गुस्सा हराम है। फिर एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा आप मुझे कोई नसीहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्सा ना किया कर। क्या फरमाया? गुस्सा ना किया कर। उसने फिर पूछा, आपने फिर यही फरमाया, फिर पूछा आपने यही फरमाया। ये बुखारी की हदीस है। एक शख्स ने आपसे आपके पास आया तो आपने फरमाया गुस्सा ना कर तो तू जहन्नुम का गुस्सा ना कर तो तू जन्नत का मुस्तहिक बन जाएगा। यानी ये अमल क्या जन्नत तक पहुंचा देगा, गुस्से का कंट्रोल करना। इसीलिए तो गुस्सा आ तो जाता है, गुस्सा पी जाना क्या कि कंट्रोल करो, यानी कैसे अब आप उसको चैनलाइज करेंगे, कैसे अब आप उसको करेंगे। एक ये सच्ची बात है, आपको यकीन नहीं आएगा कि एक कपल था, उनकी सिर्फ लड़ाई किस बात से शुरू हुई कि आज तुमने ये क्यों पकाया, ये जो भी वो चीज थी काना आलू थे या जो भी, ये मुझे पसंद नहीं है, तुमने ये क्यों पकाया। इतना वहां से बात शुरू हुई, जो गुस्से पे गुस्सा जो भी था, बहस तकरार और लड़ाई जो शुरू हुई कि आप यकीन करें कि तलाक तक नौबत आ गई। और जब बाद में पूछा यानी गया कि आपकी क्या बात शुरू क्या हुई है, तो बस उन्होंने कहा जी, बेगम ने कहा बात शुरू असल में इससे हुई थी कि मैंने आज ये चीज क्या पका ली, शुरू इससे हुई और कहां तक नौबत पहुंच गई। ये करता है गुस्सा। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाया कि इस जन्नत का मुस्तहिक बन जाएगा अगर तू गुस्सा ना कर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया जो बंदा हक पे होने के बावजूद गुस्सा छोड़ दे, यानी झगड़े को छोड़ देता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए बशारत देता है घर की। हक पे है लेकिन, यानी आपकी बात ही सही है लेकिन आप स्टैंड क्यों नहीं लेते कि बहस होगी, झगड़ा होगा, आगे बात बढ़ जाएगी तो आपने हक भी की भी बात आपने छोड़ दी, अपना हक छोड़ दिया। उस वक्त अल्लाह ताला की खातिर जो इंसान ये करता है, अल्लाह ताला उसको बशारत देता है जन्नत में घर की। ये वो तरीका है जिससे इंसान अवॉइड कर सकता है लड़ाई झगड़े को, फसाद को। यकीन करें दुनिया में कई झगड़े, 99% झगड़े इस तरह खत्म हो सकते हैं अगर इंसान गुस्सा ना करे। गुस्सा ना करने का मतलब क्या, ये नहीं कह रही गुस्सा कभी आए ही ना उसको, मतलब गुस्से को पी जाए, आए तो पी जाए। और अगर हम ये करें कि गुस्सा आए और बस अब जब तक मैं जवाब ना दे लूं इसको तब तक मेरी चैन नहीं, फोन उठाया उसको बुरा भला, उसको ये जब तक कह नहीं दिया, अपना सारा गुबार नहीं निकाल लिया, उस वक्त चैन से नहीं बैठे, उसके बाद में पछताया हाय मैंने क्या कर दिया, तो फिर तो इस क्वालिटी से तो हम फिर फारिग ही हैं। वो क्या करते हैं, वो तो गुस्से में माफ कर देते हैं। ये बहुत हौसले की बात है, गुस्से में माफ कर देना, चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं हमें शादी पे बुलाया कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। ये नहीं कि फोन उठा के उनको तड़तड़ सुना रहे हैं, अच्छा तुम्हारी ऐसी की तैसी, ऐसे हो गया वो हो गया, ये नहीं। अच्छा अगर आज मेरी मर्जी का काम नहीं हुआ तो ऐसी क्या क्यामत आ गई, आज और ने हमारी कोई हमारी एनिवर्सरी भूल गए तो क्या ऐसा मसला हो गया, हमें जो तोहफा नहीं दिया तो क्या हो गया, कोई और मेरी मर्जी के खिलाफ बात कर दी तो माफ कर दे, जाने दे कोई नहीं। ये अगर इंसान ये याद रखे फमा होती तो मिन शैइन फमता उल हयात दुनिया, सब इन चीजों ने खत्म हो जाना, फिर क्या हुआ, चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, चलो जाने दो। इंसान कहता कब तक, मेरी तो बड़ी हो गई, अब नहीं मैंने जाने देना, नहीं जाने दो, कब तक, जब तक हम जन्नत में नहीं पहुंच जाते, हमारी मंजिल तो वो है ना। जाने तो छोड़ दो, लेकिन अगर हमारे घरों में प्लेटें टूटती हैं, बेलने चलते हैं, चीखों पुकार होती है, हमसायों तक आवाजें जा रही हैं, तो कम से कम हम इस आयत में शामिल नहीं है फिर। ये हौसला मंदों का काम है। ऐसे लोग फिर अगर जन्नत में भी पहुंच गए तो वहां का भी माहौल खराब कर देंगे, इसलिए ये नहीं जन्नत में जा सकते, फिर यहीं बैठे। जन्नत का माहौल तो बहुत पुरमन और पुरसकून है। तो ये एंगर मैनेजमेंट की बात की जा रही है, सबके लिए, औरतें हैं या मर्द हैं। इफ यू सी वांट हेल्प, तो इसके लिए जाके वाकई हेल्प लें आप, एंगर मैनेजमेंट की जगह जाएं, वहां पे किसी से जाके ये क्लासें लें, क्योंकि आपको पता चलेगा किस तरह इसको मैनेज करना। तो गुस्सा आएगा लेकिन उसको मैनेज करना आना चाहिए। जैसे एंगर मैनेजमेंट के इतने सेशंस होते रहते हैं, मर्दों में चीज ज्यादा होती है, औरतों में कम होती है, लेकिन औरतें भी खैर कोई कम नहीं है, जो हैं वो बहुत ही खूनखार भी हो जाती हैं, बच्चे तक उनके उनसे डरते हैं, खानदान तो पनाह मांगता है। अगर मैं उनमें से हूं जिसको छेड़ने से लोग डरें कि नहीं भाई इसको छेड़ लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर सोच ही लें कि मेरा क्या अखलाक है और क्या किरदार है। फिर छोड़ दे, सारी बातें छोड़ दे, मैं किस पारे पे पहुंची हुई हूं, किस पे पहुंची, मेरी जुबान ही कंट्रोल में नहीं है, अगर मुझे गुस्से में यही नहीं पता चलता मैं क्या बोल रही हूं, तो मैं क्या कर रही हूं, फिर मैं क्या सीख रही हूं, क्या वाकई मैं जन्नत के पाकीजा माहौल में रहने के काबिल हूं? जन्नत की जो रेजिडेंट है ना, उसकी सिटीजनशिप, उसके लिए भी कोई क्राइटेरिया है, सबको नहीं मिल जाती। आप इस मुल्क में आए, आपको सिटीजनशिप मिली, कोई उन्होंने देखी ना आपके अंदर कोई चीज देखी, आप आपका पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है, आपका ये तो नहीं है, आप क्रिमिनल तो नहीं है, फलां तो नहीं, कुछ चीजें देखी, कोई एलिजिबिलिटी के लिए कुछ बनती है ना चीजें। जन्नत की भी ऐसे ही नहीं कि हर एक ऐरा गैरा उठ के चल पड़े वहां, उसके लिए भी एलिजिबल होना जरूरी है, और ये वो चीजें चेक की जाएंगी वहां की सिटीजनशिप देने से पहले। क्या मैं ये रखती हूं अपने पास? क्या मैं ऐसे कहती हूं मुझे गुस्सा आ गया उसके ऊपर? गुस्सा आएगा, ठीक है ना, यहां तक ठीक है बात, गुस्सा आ गया उसके ऊपर, अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसको नोट करें, उसको नोट करें कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। मैं खामोशी से होके एक तरफ बैठ जाती हूँ, वुजू करती हूँ, औज़ुबिल्लाह पढ़ती हूँ, अपने आप पे वर्क करती हूँ कि मैंने इसको इस तरह से नहीं निकालना, या मैं क्या एक खूनखार दरिंदा बन जाती हूँ, मैं तहस नहस कर देती हूँ सब कुछ, फोन पकड़ा हुआ उसकी शामत, फोन उधर उठा के फेंका, चीजें उधर उठा के करी, गाड़ी चला रही हूं तो वो स्पीडिंग कर दी, दरवाजे मार रही हूं, पैर मार रही हूं, चीखे मार रही हूं, सर अपने मार रही हूं दीवारों में, ये है मेरा रिएक्शन। खुद से पूछे, और घरों के अंदर के हालात कोई नहीं जानता, इन चार दीवारियों के अंदर बहुत राज होते हैं, हम अपने खुद एहतसाब करें और देखें कि वो तो माफ ही कर देते हैं, हम तो अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाते, हम किसी को क्या माफ करेंगे। और बाद में ये कह देना बस मुझे तुम समझ लो ना, मुझे गुस्सा बहुत आता है भाई, ये तो मैं पहले ही बता दूं, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे तो गुस्सा बहुत आता है, तो दूसरे को ही अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, वो ही बस खामोश हो जाए, मैं नहीं हटूंगी, ये तो नहीं कोई तरीका। मुझे अपने ऊपर वर्क करना है, ना कि लोगों को ये समझा देना है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। आगे वल्लदीन अस्तजाबू लिरब्बिहिम, अच्छा वो फिर वो क्या करते हैं, वो माफ कर देते हैं, उनको गजबनाक होते हैं, और फिर उसके बाद वो कहते हैं छोड़ दो, जाने दो, दरगुजर कर देते हैं, माफ कर देते हैं अल्लाह की खातिर। सुभान अल्लाह, अल्लाह ये क्वालिटीज हमें पैदा फरमा दे। और वल्लदीन अस्तजाबू लिरब्बिहिम, और वो मान जाते हैं अपने रब की बातों को। आप देखें, वो ये नहीं कहते मैं तो सारी तो वैसे मानती हूं, एक चीज है ना ये नहीं मेरे से हो सकती, मैं क्या करूं, बस ये मेरी बस की नहीं, मैं हो ही नहीं सकती मेरे से, ये नहीं वो कहते, ये एक काम है ना, ये अल्लाह का एक हुक्म है, ये नहीं बस मेरे से मानना चाहता, ये नहीं। अल्लाह ताला ने ये कहीं नहीं कहा तुम 90% मेरी मान लो, बाकी 10% तुम अपनी मर्जियां करो, वो बेशक तोड़ भी दो मेरे हुक्म तो कोई बात नहीं है, ये कहां कहा गया? अल्लाह ताला तो फरमाते 100% सबमिशन दो, 100%, ये भी नहीं कहा गया 1% तुम बेशक ना भी सबमिट करो। ये कौन करेगा? कौन अल्लाह के हुक्मों को बिला चूचरा मान सकता है? बताएं, कौन कह सकता है कि मैं बस समय ना वाता ना? ये कौन कर सकता है जो अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना जानता हो अल्लाह के हुक्म के आगे, कि मेरी मर्जी कुछ और है लेकिन नहीं, बस अल्लाह का ये हुक्म आ गया, दैट्स इट। जो अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर सकता हो, अपने मिलानात को कंट्रोल कर सकता हो, अपने आप को झुका दे अल्लाह के आगे। ये नहीं है कि अपनी ख्वाहिश के आगे झुक जाए, अल्लाह के आगे झुके। हम कहते हैं हमारी भी तो मर्जी चलनी चाहिए ना, इतना हम अल्लाह की मानते तो है ना, क्या फर्क पड़ गया? अगर एक ना भी मानी तो क्या फर्क पड़ा? नहीं, अल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बी, वो कम मानते हैं अपने रब का। और ये याद रखें, हम ये भूल जाते हैं कि कोई एक गुनाह भी ऐसा हो सकता है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान हायल हो जाए। हम सोचते ना ये बस ये नहीं मैं कर सकती, फला हुक्म अल्लाह का बस वो नहीं मुझसे मानना ही नहीं जाता, बस बस पता नहीं मेरे से नहीं हो सकता ये, मैं ना मानू पे अड़ जाते हैं। लेकिन शैतान ने भी एक ही गुनाह किया था और देख लें कि लानत ज़दा हो गया, और आदम ने भी एक ही गुनाह किया था और जन्नत से निकाले गए। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा वो होने की नहीं जरूरत के कोई बात नहीं, हम एक ही एक यही नहीं माना, पर्दे का ही तो नहीं माना मैंने, बाकी और कौन से, मैं बाकी तो सारी मैं ठीक हूं, मैं ये भी करती हूँ ये भी करती हूँ ये भी, अगर ये एक ना मान लिया तो क्या फर्क पड़ गया? नहीं। हाँ ये हो सकता है कि इंसान कह रहा है कि अल्लाह मैं मानती हूँ, अल्लाह मैं मानती हूँ, मैं झुकी हुई हूँ तेरे सामने, मैं अमल करने को तैयार हूं, और अमल करते हुए कोई कोताही रह जाए, वो कोशिश कर रहा है बेचारा अपनी तरफ से, अल्लाह भी तो इंसाफ करने वाला ना, अल्लाह देखता है ये बेचारा कोशिश कर रहा है फिर गिरता है फिर उठता है फिर गिरता है, वो एक अलग बात है, लेकिन ढीठ बन जाना नहीं मेरे से नहीं होता, ये बस एक काम है जो मैं नहीं कर सकती, मैं इसे रुक ही नहीं सकती, मेरे से नहीं रुका जाता, ये नहीं होनी चाहिए, डिटाई है फिर। ओ, मान जाओ, वो लोग हुक्म मानते हैं अपने रब का। इसमें भी हम अपने आप को डाल के देखें, वो कौन कौन सी बातें जो अभी तक मुझसे नहीं मानी जा रही, पता नहीं क्या हो गया, 25 पारे हो रहे हैं और अभी तक मेरे से पता नहीं मेरे से हो ही नहीं पा रहे, और मैं कह रही हूं कि नहीं मैं नहीं कर सकती, मैंने गिव अप कर दिया, वह मैं हार गई हूं अपनी ख्वाहिश के आगे, खुद ही हार गई हूं कि मैं नहीं कर सकती। क्या अभी तक है ऐसी चीजें? क्योंकि अल्लाह ताला को तो टोटल सबमिशन चाहिए अगर जन्नत में जाना है तो। वा कामुसला, और कायम करते हैं नमाज को, जाहिर है 5 दफा दिन में तो कॉल आती है नमाज के लिए, तो इस्तजाबू ले रब्बी, हम वो जो अपने रब को जवाब देने वाले होंगे, लब्बई कहने वाले होंगे, सबसे पहले तो नमाज की कॉल आती है उसके ऊपर सबसे पहले जवाब देंगे, कायम करते हैं उसकी तमाम शरायत के साथ, पाबंदी के करते हैं, यानी कि फजर पे हमसे नहीं उठा जाता, बस वो बड़ा मुश्किल लगता है, रातें आजकल बहुत छोटी हैं, क्या करें फिर, इशा तक वेट नहीं किया जाता, ये नहीं करते कायम। और अब ये वाली एक क्वालिटी है जो हमने नहीं पहले पढ़ी थी, और सूरह आले इमरान में आई तो थी एक बात, ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप मशवरा किया करें अपने सहाबा के साथ, जबकि ये किस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब ओहद में, आपको याद होगा ये बात सीरत में आपने पढ़ी भी है, कि ओहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज्यादा ये मिलान था कि हम अंदर ही मदीना में रह के लड़ें, लेकिन कुछ जोशीले नौजवान थे उनका ये ख्याल था नहीं जी हमें बाहर जाके लड़ना चाहिए, और हमें इस तरह जो बदर से रह भी गए थे अब उनका बहुत जोश था, बस हम ये करके दिखाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात मान ली, ठीक है मशवरा एक हुआ। अब गए बाहर तो एक शिकस्त हो गई, और शिकस्त में जहां दूसरी वजूहत थी वहां पे ये भी वजह थी कि बाहर निकल के लड़े थे। अब अल्लाह ताला ने फरमाया अब इसका ये मतलब नहीं आप दोबारा कभी इनसे मशवरा ना ले, ऐ नबी फिर भी आपने इनसे मशवरा लेते रहना, इनको माफ कर दें और इनसे मशवरा करते रहें। तो वहां पे ये बात आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद की गई, आप मशवरा लीजिए, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप मशवरा से काम लें, तो हम सबको कितना ये बात का अमल करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे आए अमरुहुम शूरा बहना हो, मशवरे से काम करते हैं आपस में, अपने आप को यानी अकले कुल नहीं समझते कि मैं ही ऑल इन ऑल हूं, मुझे किसी मशवरे की जी जरूरत नहीं है, अपने मशवरे अपने पास रखो, नहीं कहते मशवरे से काम लेते। लेकिन हाँ एक बात याद रखिए, मशवरा किसी भी राह चलते से नहीं ले लेना कि सड़क पे जा रहा उसे पकड़ के आप जी मैं मशवरा तुमसे करना चाहते हैं, ऐसे नहीं। मशवरा उसी से लेंगे जो उस फील्ड का हो, जो उस काम को जानता हो। मसलन आप बीमार होते हैं तो आप किससे मशवरा लेते हैं? किसी इंजीनियर से जाके तो नहीं लेते, किसी डॉक्टर से ही लेते हैं ना, क्यों? इसलिए कि वो उस फील्ड का बंदा है। इसी तरह आप जब मशवरा और चीजों में करने लगते हैं तो अपने ट्रस्ट वर्दी लोगों से मशवरा करते हैं। एक तो आपको उनके पर ट्रस्ट होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनको कुछ समझ बूझ भी है, ऐसे ही नहीं कि बस चूंकि ये हमारे ये फलां हैं तो ये फलां है मेरा रिश्तेदार इसलिए मैं इसे मशवरा ले, नहीं, उसको कुछ समझदार भी होना चाहिए। आप दीन का कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो फिर आपको दीन के जो जानने वाले हैं उनसे मशवरा लेना चाहिए। इसी तरह खास तौर पे उन कामों में जरूर मशवरा ले लेना चाहिए जो इज्तमाई नौइयत के हों, यानी जिसमें कलेक्टिव सबका एक भले की बात हो। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जंग के लिए जा रहे हैं तो जो अपने सहाबा हैं उनसे मशवरा किया, तो क्योंकि वो सबका एक अवामी एक पब्लिक का एक मामला था ना, इंडिविजुअल मामला नहीं था। हालांकि इंडिविजुअल में भी आप ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन खास तौर पे जिसमें पब्लिक का कोई फायदा या नुकसान उसके अंदर रिलेटेड हो उसमें जरूर लेना चाहिए मशवरा। और दूसरी बात इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मशवरा लेने के बाद फाइनल डिसीजन करने का हक अमीर को ही होता है। जिसने मशवरा लिया है, उस जो अमीर है या जो भी मशवरा लेने वाला है, उसी का हक होता है कि वो फाइनली डिसाइड करे कि अब मैं क्या करना चाहता हूं। अब किसी को ये माइंड नहीं करना चाहिए हमने तो मशवरे बड़े दिए, ये हमारे मशवरा तो कोई माना ही नहीं इन्होंने, तो अब हमने आइंदा के लिए हम तो नाराज हैं इनसे, क्योंकि जब मेरी बात ही नहीं सुनी तो फिर क्या फायदा। आप अपने हस्बैंड को कोई मशवरा देती है, उन्होंने नहीं माना, उन्होंने अपनी मर्जी कोई और कर ली, तो अब ये मतलब नहीं कि मशवरा मशवरा ही होता है, वो ढोंस नहीं होती कि अब आप ठूंसना शुरू हो जाए कि मेरी बात मानो। तो अब क्या यहां पे आप देखें ओहद में क्या हुआ था कि मुनाफिकीन की एक जमात पलट गई थी वापस कि हमने तो नहीं आप जाना आगे, आप हमने तो मशवरा दिया था कि आप अंदर रह के लड़े, अब्दुल्ला बिन उबई ने भी ये मशवरा दिया था ना, आप अंदर रह के लड़े, आप तो अंदर रह के लड़े ही नहीं तो हम तो वापस जा रहे हैं। ये मशवरे का मकसद नहीं होता, याद रखिए। कभी माइंड नहीं करना चाहिए कि मेरा मशवरा क्यों नहीं सुना गया, यानी अब ये भी एक तकबर की बात हो जाती ना कि मेरा मशवरा नहीं, मैं तो इतनी बड़ी चीज थी कि मेरा ही मैंने अगर राय दे ही दी थी तो बस मेरी ही सुनी जाती, तो ये हुक्म नहीं होता, मशवरा मशवरा ही होता है। फिर तीसरी बात इसके अंदर एक बात और समझने की है, वो ये कि मशवरे का मतलब ये नहीं होता कि मेजॉरिटी जिस तरफ जा रही हो वो वाला मशवरा मानना जरूरी है और वो ही सही है। आप देखते हैं कि जिस वक्त ग़ज़वा खंदक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज़रत सलमान फारसी थे जिनका मशवरा था खंदक खोलने का, उनका मशवरा मांगा, हालांकि कबायर सहाबा वहां पे मौजूद थे, अबू बकर सिद्दीक हैं, हज़रत उमर हैं, बाकी कबायर सहाबा मौजूद हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी का माना। अब ना तो उन्होंने अपनी अना का मसला बना दिया, हम इतने बड़े बड़े यहाँ बैठे हुए थे हमारी बात सुनी नहीं गई और इनकी बात सुन ली, ना ये किसी ने कहा कि इतने सारे हम लोगों ने तो ये बात कही थी, आपने एक की बात सुन ली और हम सबकी बात छोड़ दी, ये नहीं है। एक की भी बात सुनी जा सकती है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं होता, और ये भी बात समझ लें कि फाइनल फिर उसी को हक है कि वो डिसाइड करे। और फिर हम अपने इनफरादी मामलात के अंदर भी मशवरा कर सकते हैं, और उसके अंदर भी मशवरे का फायदा क्या होता है कि इंसान की जब इंसान ये सोचता है ना कि मेरे पास कौन सी अकले कुल है, मैं अगर किसी से पूछ लूंगी तो कोई अच्छी बात मुझे समझ आ जाएगी जो हो सकता है मेरी समझ में ना आ रही हो अभी, तो उससे इंसान को फायदा होता है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स कभी जहन में नहीं भी आते, बाज लोग मशवरा करने को ही अपनी तौहीन समझते हैं, वो सोचते हैं अगर हमने मशवरा कर लिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि शायद लोग ये समझेंगे कि इसको खुद नहीं कोई समझ। नहीं, अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरे से काम ले सकते थे तो हम में से किसी को इसके अंदर आर नहीं समझनी चाहिए कि हम मशवरा क्यों करें, ठीक है। फिर एक हदीस आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी इसके लिए मेरी उम्मत के इबादत गुजारों को जमा कर लो और आपस में तय कर लो, किसी की तनहा राय से फैसला ना करो। ये किस वक्त हुआ था कि जब حضرت خطیب بغدادی نے حضرت علی سے یہ روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے بعد اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس میں قرآن نے کوئی فیصلہ نہ کیا اور آپ سے بھی اس کا کوئی حکم ہمیں نہ ملتا ہو تو ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی. یعنی جو فقہاؤں دین کے ان کی سمجھ جو دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے ہوں فقہاؤں ان سے پھر مشورہ کر کے وہ آپس میں مشورہ کر کے آپ کو کسی بات پہ کنکلوژن پہ پہنچا دیں تو آپ پھر اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ نہیں کہ بے علم لوگوں سے بے دین لوگوں سے جا کے مشورہ کرنے اب آپ مشورہ کرنے بیٹھ جائیں میں قرآن کو کلاس لوں یا نہیں لوں. اب وہ لوگ جو کہ کبھی بھی اس طرف آئے ہی نہیں وہ کیا مشورہ دیں گے؟ انہوں نے تو کہنا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ٹائم ویسٹنگ ہے, کیا فائدہ ہے اس کا, اس سے کتنے کی نوکری مل جائے گی. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ مشورہ بھی کس سے لے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کام کا ارادہ کیا اور اس میں مشورہ لے کر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ارشد امور کی طرف ہدایت فرما دے گا, یعنی اس کا رخ اس طرف پھیر دے گا جو اس کے لیے انجام میں خیر کا باعث ہوگا اور جو بہتر ہوگا. جب انسان مشورہ لے کے چلتا ہے, دیکھیے ایک مشورہ ہے اللہ سے کرنا اور وہ ہے استخارے کی شکل میں کہ جب ضروری کوئی کام, یہ نہیں کہ میں بس صبح اٹھتی ہوں میں روزانہ ہی استخارہ پڑھ لیتی ہوں کیونکہ روزانہ کہ چلو جی میرے کام ہو جائیں, ایسے نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ جب انسان کسی اہم معاملے کے اندر ہو اور وہ انسان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کروں, اس میں اہم معاملہ ہو تو تب اس میں استخارہ کیا جائے, اسی طرح پھر مشورہ بھی کیا جائے. کیونکہ ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم مشورے سے کام کرتی ہو تو ضرور ان کو صحیح راستے کی طرف ہدایت کر دی جاتی ہے, یعنی اللہ کی پھر مدد آ جاتی ہے. تو مشورہ کرنا بھی ان لوگوں کا کام ہے کہ جو جنت میں جانے والے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اللہ وہ خرچ کرتے ہیں جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے, یعنی یہ بھی ان جنت میں جانے والوں کی ایک صفت ہے کہ وہ اللہ کی خاطر خرچ کرنے والے ہیں. یہ بھی وہی کر سکتا ہے نا جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہو. اور یہ یعنی اس میں ایک ترغیب دی گئی ہے کہ خرچ کرو, کیونکہ جو کچھ تمہارے پاس رزق ہے وہ ہم نے ہی تو دیا ہے, وہ تو تم نہیں لے کر آئے. جب پیدا ہوئے تھے تو کیا تھے؟ ننگے بدن تھے, ننگے پیر تھے, کوئی کچھ نہیں تھا تمہارے ہاتھوں میں, خالی ہاتھ آئے تھے. اللہ نے تمہیں دیا نا, اب اللہ ہی تمہیں فرماتا ہے, وہی رب جس نے تمہیں عطا کیا ہے وہی کہتا ہے کہ اس میں سے تھوڑا دے دو اس کے راستے میں. تو پھر تو انسان کو مشکل نہیں ہونی چاہیے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا تھوڑی ہے, یہ تو اس مالک کا ہے. کہتے تو ویسے ہم سبھی ہیں لیکن دیتے وقت انسان کا پتہ چلتا ہے کہ کیا واقعی وہ خرچ کرنے میں اس طرح سے سوچتا ہے کہ یہ میرا تو نہیں ہے, یہ تو اس مالک کا ہے, پھر مجھے خرچ کرنے میں کیوں مشکل ہو رہی ہے. اور واقعی کسی کے ساتھ اگر خیر خواہی ہوتی ہے نا ہمیں, تو صرف ایک خیالی باتیں کرنا, ہمیں تو بڑی ہمدردی ہے ان سے, ہم تو بڑے آنسو بہاتے ہیں وہ ان ریفیوجیز کے لیے, ان کے لیے, ان کے لیے, فلاں کے لیے, لیکن جس وقت خرچ کرنے کا معاملہ آئے تو پھر ہم مٹھی بند کر لیں. تو یہ پھر کون سی ہمیں ہمدردی ہوئی؟ یہ تو کوئی ہمدردی نہیں ہے پھر یہ. اور یہ صدقہ کرنا, یہ خرچ کرنا اللہ کے راستے میں اتنا بڑا کام ہے, اتنا بڑا کام ہے کہ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ مجھے واپس لوٹا دے کہ میں صدقہ کر لوں, مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ کر لیتا. صدقہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ انسان اس وقت بھی حسرت کرے گا, نماز اور روزے کی نہیں کرے گا, صدقے کی, کہ میں صدقہ کر لوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر, یعنی اتنی سی بھی تمہارے پاس چیز ہے تو وہ بھی تم خرچ کر کے اور جہنم سے بچ سکتے ہو. مما رزقناہم ينفقون, یہ کتنی بار قرآن میں آیا ہے, یعنی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ خرچ کیا جائے, اس کے راستے میں دبا کے نہ رکھا جائے, کہ اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں, اپنے سیونگز اکاؤنٹ بھرتے چلے جا رہے ہیں, اپنے لاکرز بھرتے چلے جا رہے ہیں, اپنے ہی لیے خرچ کیے جا رہے ہیں, لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معاملہ آئے تو دل تنگ ہو جائے, اتنا تو دے دیا اب اور دیں. اور اب تو اتنا آسان ہے, میں کہتی ہوں پہلے شاید اتنا آسان نہ ہوتا ہو جتنا جسٹ ون کلک اوے آپ کے جو ہے نا کوئی بھی صدقہ کرنا ہے, جسٹ ون کلک اوے. کہ آپ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں اور آپ جسٹ آپ اپنے فون پہ آپ کسی پہ ایک کلک کرتے ہیں और देखिए दूसरे तक पहुंच जाती है चीज, सदका आपकी तरफ से अदा हो जाता है। इससे ज्यादा आसान क्या होगा, आपको लेके भी नहीं घूमने की जरूरत, और सदका करने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं है, ठंडा पानी ही लेके निकल जाएं और गर्मी के अंदर किसी को पकड़ा दें। आप गाड़ी में बाहर जाते हैं अपने साथ कोई घर से चीज रख लें, हमारे यहाँ पे तो नहीं है लेकिन हमारे मुल्कों के अंदर कोई गरीब लोग फकीर लोग आते हैं, उनके हाथों में थैलियां दे दें खाने की, पानी की बोतलें रख लें, कोई मजदूर रास्ते में है उनको पानी दे दें ठंडा। अब सदके के कई तरीके हैं, एक तरीका नहीं है, हम डिफरेंट तरीकों से करें सदका, हर हर तरीके से करें। पता नहीं कहाँ पे हमारा कौन सा एक डॉलर भी लग जाए जो वो उस खजूर की तरह जिसको अल्लाह ताला बहुत पहाड़ के बराबर कर देगा, हमें क्या पता वो एक डॉलर जो मैंने खर्चा वो अल्लाह ताला कितना बड़ा पहाड़ बना दे। इसलिए कोई भी जगह पे ये ना सोचे मैंने तो पहले भी दिया हुआ है, मैंने तो पहले भी, मैं फलां जगह जो दे चुकी हूँ तो अब यहाँ पे देने की क्या जरूरत, नहीं चाहे एक डॉलर ही दे दें, हमें शर्म आती है थोड़ा देंगे तो क्या होगा दूसरा क्या कहेगा, नहीं कोई नहीं, हमें क्या पता कौन से जर्रे को अल्लाह पहाड़ बना दे। अगर मैंने कहीं और दिया भी हुआ है तो यहां पे भी दे दूं, चलो तो कहीं पे भी खाली ना जाने दें, थोड़ा चाहे दे दें लेकिन दें जरूर। वल्लदीना इज़ा असाबहुमुल बग़्यु हुम यंतसिरून, और वो लोग के जब पहुंचती है उनको कोई ज्यादती वो बदला लेते हैं, यानी जुल्म और ज्यादती उनके ऊपर किया जाए तो वो ऐसे नहीं होते कि, अभी देखिए याद रखिए ये मक्की सूरत है, मक्का में कुफू आईदिया कुम का हुक्म था कि अपने हाथों को रोके रखो, ऐसा नहीं था कि हजरत बिलाल में कोई ताकत नहीं है या और जो आजाद लोग, चलो वो तो गुलाम थे, जो आजाद लोग उनके अंदर ताकत ही नहीं थी जवाब देने की, ऐसा नहीं है, मेरे को उनको हुक्म था कि आपने जवाब नहीं देना, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता मोमिन के साथ, बता दिया गया कि ये हमेशा नहीं होगा, हमेशा बर्दाश्त करते रहना नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा जैसा ईसाइयों के अंदर है कि उन्होंने बना लिया हुआ है कि आपको गाल पे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो, दूसरे पे भी मार लो जी, ये वो खुद भी नहीं इस पे अमल कर सके, उन्होंने बना तो ली ये चीजें कि हम बहुत, देखो हम कितने नाइस हैं कि हम तो ये करते हैं, तो इस पे अमल तो करके दिखाओ, नाइस चीजें कहना तो बड़ी आसान है, अल्लाह को पता है इंसान के अंदर से ये जज्बा उठता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है तो मैं बदला लूं। तो फरमाया कि ठीक है वो हमेशा दबे भी नहीं रहते कि जिल्लत बर्दाश्त करते रहे और जिल्लत की जिंदगी के अंदर रहे, अल्लाह की मदद उनके साथ हो जाती है और वो फिर बदला लेने के काबिल हो जाते हैं। ठीक है, तो मोमिन मुस्तकिल जिल्लत नहीं बर्दाश्त करता, मुस्तकिल जुल्म नहीं बर्दाश्त करता। वह जजाऊ सैयत सैयतुम मिसलुहा, और जजा बदला बुराई का, बुराई है उस जैसी, बुराई का बदला उसकी जैसी बुराई है, यानी यहां पे कहा गया कि यानी बुराई किसी ने किया है तो उसका बदला क्या, उतनी ही जितना उसने जख्म पहुंचाया उतना ही उसके साथ कर लेना। अब यहां पे सैयतुन क्यों कहा गया, जो बुराई कर रहा है अगर उसके बदले में दूसरे ने उतना ही बदला ले लिया तो उसको तो बदला कह सकते, बुराई तो नहीं कह सकते, मगर यहां पे मुशाकलत के असूल के तहत, यानी जैसी उसने की वैसी इसने की, उसके तहत सैयातुन आया, वरना यहाँ पे मतलब क्या है कि बदला है उस जैसा ही, यानी इसने एक थप्पड़ मारा तो ये भी एक थप्पड़ उतना ही मैग्नीट्यूड का मार सकता है, उसने एक ज्यादती की कुछ कहा तो ये भी उसके बराबर का कह सकता है, मिथलुहा, इसीलिए सैयातुन आया कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, देखे सैयातिन सैयातुन, इतना एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, इतना भी ज्यादा ना, जैसे ये दो लफ्ज सेम है ना इसी तरह सेम होना चाहिए, जरा भी अगर ज्यादा हो गया, वो आदमी नहीं आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिसने कहा था मेरे कुछ गुलाम है वो भी मेरे ऊपर बड़ी ज्यादतियां करते हैं, यानी कुछ इधर उधर कर लेते हैं चीजें, कुछ कर लेते हैं तो फिर मैं उनको की सजा देता हूं तो मेरा आखिरत में क्या बनेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर उनकी ज्यादती ज्यादा हुई तो तुम उनको इसका भुगतना पड़ेगा, और अगर तुमने जो उनको सजा दी वो ज्यादा हो गई तो फिर तुमको इसका भुगतना पड़ेगा, तो उसने आजाद कर दिए थे अपने गुलाम। तो यानी किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया है, हमारा दीन कहता है आगे आ रहा है अफजल बात क्या है, वो तो आगे आ रहा है कि माफ कर देना, लेकिन ये इजाजत देता है कि आप उतना एग्जैक्ट बदला ले लें, मगर बदला लेने में फिर एहतियात करें कि मिसलुहा होना चाहिए, अगर एक ने थप्पड़ मारा और दूसरे ने थप्पड़ मारने के साथ साथ धक्का भी दे दिया, उसको गुस्सा ज्यादा था ना कि इसने थप्पड़ मारा क्यों ना। अब इसने मारा तो सही थप्पड़, लेकिन साथ धक्का भी जो दिया है वो एक इजाफी हो गया। हम तो कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना है, मैंने तुमने किया तो किया, कैसे अब घर तक पहुंचा के आएंगे। अब अगर इसने कर लिया है तो अब ऐसी इसको सुझाएंगे ना कि दोबारा कभी बोलने के काबिल ना रहे। वो नहीं फिर बदला, फिर वो ज्यादा है। यहां पे कहा गया फिर लेना है बदला तो मिसल, सेफ साइड क्या होती है कि इंसान फिर माफ कर दे, क्योंकि जो बदला लेने वाला है वो उसकी नींदें हराम रहेंगी, मैं बदला कैसे लूं। जो माफ करने वाला होता है वो मीठी नींद सो जाता है। तो लेकिन फरमाया फमन अफा व असलह अजरहु अल्लाह, लेकिन जो माफ कर दे ना और इसलाह करे तो उसका अजर अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह के जिम्मे है। एक तो पहले ये बात देख लेते हैं, जो आफा जो दरगुजर कर दे, जो माफ कर दे। और हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल इसमें बेस्ट मिसाल है। तो आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी जात के लिए इंतकाम नहीं लिया, यानी आपको जितना मर्जी कुछ कह दिया जाता। इवन आपने वो वाक्या पढ़ा कि तलवार सोंध के कोई खड़ा हो गया कि मैं अब आपकी आपको मारने लगा हूं तो अब आपको कौन बचाएगा मेरे से, जब तलवार लटकाई हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त पे और नीचे आराम फरमा रहे थे, उसको भी माफ कर दिया। उसको कहा तुम, जब उसे हाथ से तलवार गिर गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाई तलवार और उसको उसके ऊपर रखी, लंबा वाकया हम सीरत में पढ़ चुके हैं, तो आपने फरमाया अब तो जो मुझसे कौन बचाएगा। उसके पास कोई जवाब नहीं था, आप चाहते तो उसको कत्ल कर देते। उसको कहा तुम मुसलमान हो जा, कहता मैंने नहीं होना। इस्लाम ले आओ, कहता मैंने नहीं लाना। तो आप तो कत्ल कर सकते थे ना, एक तो मुझे कत्ल करने का सोचा और अब उसके बाद फिर कह रहे मैंने इस्लाम भी नहीं लाना। नहीं, आपने छोड़ दिया उसको। तो आप ये देखें कि माफ करना फरमाया अफजल है। उस यहूदी औरत जिसने जहर मिला दिया था आपके खाने में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी नहीं बदला लिया था। लेकिन बाज जगह पे बदला लेना भी जरूरी होता है, इसीलिए यहां पे आया वह असलाह। अगर उसे इसलाह हो रही हो, इसलाह हो रही थी ना, जो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने लोगों को माफ किया, फिर उसके बाद देखिए इसलाह हुई, वो जानी दुश्मन कैसे इस्लाम ले आए, कैसे जान निसार बन गए। लेकिन बाज जगह ऐसे होता है, मसलन है कोई कातिल है, कोई डाकू है, कोई ऐसे लोग हैं जेल में, उनको कोई कह दे जी हमने माफ कर दिया इनको, आज जश्न आजादी की खुशी के अंदर इनके लिए आम माफी है। अब वो क्या निकल के करेंगे, या जो पशेमान ही ना हो जो उसने किया है, उसके ऊपर पशेमान ना हो और उसको भी माफ कर दिया जाए, वो क्या इसलाह करेगा अपनी। पर हाँ, इसलाह वहां हो सकती, जैसे एक वाक्य आपके सामने, कई दफा आपने इसके ऊपर भी देखा होगा कि एक आदमी ने अपने बेटे के कातिल को माफ कर दिया, गैर मुस्लिम था वो, उसको माफ कर दिया बाप ने, वो कातिल भी कैसे फिर फूट फूट के रो रहा था, उसकी फैमिली भी। और यहाँ पे इसलाह के चांसेस है ना, आप किसी ऐसों को जो बच्चियों के साथ गलत करते हैं, या ऐसे उनको उठा के माफ कर दिया जाए जिनका ट्रेल रिकॉर्ड ही इतना खराब पिछला चला आ रहा है, तो फिर नहीं, यहाँ हद जारी करनी है। नहीं जी, अब हमें रहम आ गया, हम इसके ऊपर हद नहीं जारी करते, इसका हाथ ही नहीं काटते, ये नहीं कर सकते। फिर इसलाह जहां पे हो रही हो वहां पे, तो अगर कोई इतना बड़ा कदम उठाता है कि वो माफ कर देता है और इसलाह करे, तो अब क्या है, अजरहु अल्लाह, उसका अजर अल्लाह के जिम्मा है। आपके साथ किसी रिश्तेदार ने बुरा किया और बहुत बुरा किया, अब आप बदला तो ले सकती हैं, आपको भी बात करनी आती है, आप भी फोन उठा के उतना ही बदला ले सकती हैं, लेकिन आपने कहा कि नहीं मैंने अल्लाह से अजर लेना, आपने माफ कर दिया। और ये आप देखेंगे, वैसे नोट करिएगा आप, आपको दुनिया में भी नजर आ जाएगा लोगों को कि जो लोग ऐसा करते हैं ना, फिर अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी नवाजता है। दुनिया में भी बहुत देखा गया कि फिर वो लोग जो होते हैं, कैसे लोग उनकी से मोहब्बत करने लगते हैं। जिसने ज्यादती की थी वो भी बाज दफा, बहुत दफा ऐसा होता है कि वो खुद निदामत महसूस करता है कि मैंने क्या किया, लेकिन वो ना भी करे तो अल्लाह और लोगों को उनका शिदाई बना देता है। वो अपने कैरेक्टर में इतने खूबसूरत होते हैं कि लोग उनसे मोहब्बत करने लगते हैं, जिनको माफ करना आ जाए। बड़ा ये भी हौसले का काम है, तो सारे देखिए हौसले के काम ही है ना। जन्नत आसान तो नहीं है, जन्नत ऐसे तो नहीं मिल जानी। जैसे मैंने आपको भी बताया कि ऐसे ही रात चलते भी जा रहे हैं, कोई भी जब घुसता चला जा रहा है घुसता चला जा रहा है, ऐसे नहीं जन्नत मिल जानी। हम कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बड़ा मुश्किल है, तो किसने आपको कहा जन्नत आसान है? जन्नत है ही मुश्किलों से गुजर के पहुंचने की जगह। उसका रास्ता तो दिखा दिया था ना अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को, उसके रास्ते में बड़ी मुशक्कतें थी, बड़े कांटे थे, बड़ी मुश्किलात थी। तो ये सारे मुश्किल काम है तो इन्हीं से गुजरना पड़ेगा अगर जन्नत तक पहुंचना है। अगर रास्ता देखोगे ना तो रास्ते में तो रुकावटें हैं, मसले हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन मंजिल देखोगे तो वो बड़ी खूबसूरत है। तो जो माफ कर दे, इसलाह कर दे, जब जब कुरान में कहा जाए कि उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है, या हदीस में कहा जाए अजर ना बयान हो, देखिए बाज चीजों का तो अजर बयान हो गया ना, 70 गुना 700 गुना इतने गुना, लेकिन जब ये कहा गया कि बस अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह ही देगा, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? कि अल्लाह अब बेहिसाब देगा, बेपनाह देगा, बहुत ज्यादा देगा। सुभान अल्लाह। तो अगर मुश्किल काम है तो देख लो अजर भी तो कितना बड़ा है, क्योंकि इसके लिए दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है, दिल मानता ही नहीं माफ करने को। और पता है कैसे पता चलेगा माफ किया है कि नहीं? जिसने हमसे बुराई की है कैसे पता चलेगा हमने माफ किया है ना? मुंह से तो हम बोल देते हैं, लेकिन वाकई दिल ने माफ किया या नहीं इसकी एक निशानी है। उसके बाद अगर आपने वाकई दिल से किसी को माफ कर दिया होगा ना, उसके बाद अपनी गुफ्तगू देखिएगा, आप उसके बारे में कैसी गुफ्तगू करते हैं। जब आप लोगों में बैठते हैं तो उसकी बात आ जाती है, तो क्या कहते हैं आप? उसी से पता चल जाएगा कि कंप्लीटली माफ किया या नहीं किया। अगर नहीं किया होगा तो कुछ ना कुछ गलत ही निकलेगा, उसकी कोई बुराई ही निकलेगी। और अगर वाकई माफ कर दिया होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। मन अफा वासला फअजरहु अलल्लाह, अल्लाह हमसे भी ये काम ले लेना, हमें भी इतने बड़े दिल दे दे कि हम दूसरों को माफ कर दिया करें, हमें भी ये हौसले दे, हौसले नहीं है हमारे अंदर इतने, अल्लाह हमें ये हौसले दे, क्योंकि तो हमसे बुरा भी कर ले तो हम जाने दे, दरगुजर कर दे, छोड़ दे, लेट गो कर दे, फॉरगेट कर दे, इग्नोर कर दे, क्योंकि मुझे अजर अल्लाह से चाहिए। पीछे ना पड़ जाए उसके, हर बात जरूरी नहीं होती कि हम उसके पीछे पड़ के उसको घर तक पहुंचा के आए। किसी ने कुछ बोला, अब जब तक चैन नहीं आएगा जब तक मैं इसको जवाब ना दे दूं, हर बात इस काबिल नहीं होती। ठंडे भी हो जाया करें कभी, छोड़ भी दिया करें कभी। आप उसके ऊपर 3 दिन सो के देखें, यानी 3 दिन उसके ऊपर गुजारें, उसके बाद देखें कि आपने जवाब देना है या नहीं। आप देखेंगे खुद ही आपका आप दिल ही नहीं करेगा जवाब देने, कहेंगे छोड़ो। हर चीज को 3 दिन दिया कर। बहुत गुस्सा इस वक्त आ रहा है, एकदम फोन उठाने की जरूरत नहीं, एकदम जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी ना मैंने इसको कहा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं फटी पड़ूंगी गुस्से से, नहीं 3 डेज। उसके बाद आपको लगेगा वैसे बात इतनी बड़ी तो नहीं थी, चलो छोड़ जाने दो। ये एक अच्छा तरीका है एंगर मैनेजमेंट के लिए भी, और उसके बाद फिर माफ करना भी आसान हो जाएगा। और जिसने बदला ले लिया तो अब ना सोचे कि अब मुझे अजर भी मिलेगा, अब तो बदला ले लिया आपने। जिसने बदुआ दे दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने भी अपना बदला ले लिया। इन्नहु ला युहिब्बु ज़ालिमीन, बेशक वो मोहब्बत नहीं करता जालिमों से। अब ये बात ना एकदम दिल को पकड़ लेती है कि आए अल्लाह नहीं मोहब्बत करता जालिमों से। जालिम कौन होते हैं यहाँ पे? जालिम कौन है? ऐसे तो जालिम की बहुत सारी किस्में हैं जुल्म की, यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में जो बात हो रही है उसमें जालिम कौन है? उसमें जालिम नंबर 1 वो है जिसने ज्यादती की इब्तदा की, पहला थप्पड़ जिसने माला, जिसने बदतमीजी पहली की, जिसने दूसरे को गाली पहले दी, जिसने दूसरे की चीज पहले छीनी, जिसने बुरा भला पहले कहा, यानी जो इनिशिएट करने वाला है ना वो जालिम है। चाहे उसे बदला ले भी लिया जाए लेकिन जालिम वो ही बनता है। इसने स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि बदला तो मिसल का लिया गया ना, जुल्म इसने किया। नंबर 2 एक और भी जालिम है, बाज दफा मजलूम भी जालिम हो जाता है। वो कैसे? मजलूम जब बदला लेने में ज्यादती कर दे तो वो जालिम हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी ने थप्पड़ मारा, आपने थप्पड़ मारा और साथ धक्का भी दे दिया, अब कौन है मजलूम? अब वो मजलूम हो गया, ये जालिम हो गया, क्योंकि इसने बदला लेने में कहा गया था सही या तो मिसलूहा, इसने ज्यादा कर दिया। बात समझ आ गई? अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को पसंद नहीं करता। तो जालिम दोनों, ये दो किस्में आपको जालिमों की मैंने बताई, ये दोनों ही जालिम हैं।